الله تعالى نے فرمایا سمن، یہ بہرے ہیں یعنی سن بھی نہیں سکتے. دیکھیں جب بینائی چلی گئی اپنی تو چلو کوئی بتاتا. اب دیکھیں اگر کبھی لائٹ چلی جائے کسی وقت تو وہ کیا ہوتا ہے، انسان سننا زیادہ شروع کر دیتا، پھر چھوٹی چھوٹی آوازیں بھی آنے لگتی. پھر سب سے پہلے یا تو کوئی اگر آپ کو کہے کہ بھئی ادھر آ جاؤ، فلاں جگہ پہ موم بتی پڑی ہے، آپ کان کان آپ کے زیادہ تیز ہو جاتے ہیں، آپ آوازوں کو زیادہ دھیان سے سنتے. تو ان کی تو سننے کی صلاحیت بھی ختم ہو گئی. یہ نہیں کہ یہ بہرے ہو گئے تھے ویسے، جو جتنے منافقین تھے مدینہ میں وہ بہرے پھرتے تھے، نہیں، حق بات نہیں سن سکتے تھے پھر. یعنی حق بات جیسے جس کو ہم کہتے ہیں نا، ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دی. انہی مجلسوں میں بیٹھ رہے ہیں سوچے، لیکن کیا ہے، عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہی بیٹھتا تھا. یہ تھوڑی تھا کہ وہ نہیں بیٹھتے تھے، نمازیں آ کے ساتھ پڑھتے تھے. لیکن پرابلم یہی ہے نفاق کے ساتھ، کیسے انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں تو ٹھیک ہوں لیکن وہ غلط راستے پر، اندر کھوٹ ہے نا. یہ لوگ بھی کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، حق بات ہو رہی ہے وہاں پہ، ان کو سن ہی نہیں رہا، ان کو حق سنتا ہی نہیں، بہرے ہو گئے. چلو اگر انسان بہرا ہو جائے تو کسی کو کوئی بول کے ہی کوئی بات کرنے لگتا ہے، بول بھی نہیں سکتے، بکمن گونگے ہیں، امیون اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، تو وہ نہیں پلٹیں گے، وہ لوٹیں گے نہیں. اب میں نے بتایا تھا نا آپ کو، یہ کون سا سٹیج ہے، فورتھ سٹیج ہو گیا، ہوپ لیس کیس ہو گیا، یہ کبھی بھی نہیں لوٹیں گے، اب یہ پلٹیں گے ہی نہیں، آئیں گے ہی نہیں واپس. کس طرف نہیں آئیں گے، ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے. اور آپ کو پتا ہے نا، ایک ہوتا ہے کوئی اندھیرے میں ہی رہتا رہے تو چلو اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا روشنی کیا ہے، وہ اس کو یوز ٹو ہو جاتا ہے. لیکن اگر لائٹ جلے اور پھر ایک دم بلیک آؤٹ ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، اتنی دیر تک تو انسان کو سمجھ ہی نہیں آتی، اس کے آگے تو فلیشز ہوتے رہتے ہیں، وہ زیادہ مشکل ہوتا ہے نا. تو ان کا بھی یہ ہوا، روشنی تھی پھر روشنی بجھ گئی. اب اس کے بعد تو یہ اور زیادہ تکلیف دہ چیز ہے، اور زیادہ مشکل چیز ہے، کیونکہ دیکھ لیا انہوں نے، اب اندر بھی بے چینیاں اور اندر بھی ایک کشمکش ہے. حق دیکھ چکے ہیں پھر نہیں ماننا. اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اس قسم کے نفاق سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اور پھر دوسری مثال آتی ہے، دوسری مثال بھی ایک بہت خوبصورت مثال ہے، اور وہ ان منافقین کی ہے، میں نے کہا نا جن کا ابھی سٹیج سٹارٹ کا ہے. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا دیکھتے ہیں. او کسیبن، یا جیسے بارش کی مثال، زوردار بارش، سیب کہتے ہیں بہت مسلادار بارش کو، من السمائی، آسمان سے، یعنی اوپر سے آ رہی تھی، یعنی ایسی بارش تھی کہ بعض دفعہ بارش ہوتی نا کہ ایک جگہ تھوڑی اور پھر آگے کچھ زیادہ ہو رہی ہے پھر تھوڑی ہے، یہ بارش کیسی ہے، آسمان سے ایک مسلادھار برش برس رہی، سب کے اوپر برس رہی. فی، اس میں، ظلمات ہیں، اندھیرے ہیں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ رات ہے اس میں یہ بارش ہے. ورعدن، اور کڑک ہے، وبرق، اور بجلی ہے. پہلے اس کی امیجری دیکھ لیں، پھر اس کے بعد پھر میں آپ کو سمجھاتی ہوں. یجعلون، وہ ڈال لیتے ہیں، جعلا مطلب ڈال لینا، بنانا، ڈالنا. اصابعہم، انگلیاں ان کی، یعنی اپنی انگلیاں. فی آذانیم، اپنے کانوں میں. آپ دیکھیں جب رات ہے، زوردار می بہ رہا ہے، اور اس میں کڑک بھی، بجلیاں بھی چمک رہی ہیں، اور گرج بھی ہے، بادل گرج رہے ہیں. تو اب ڈر کے مارے، مینا سوائے کے کڑک کے، حضر موت، جیسے کہ موت کا ان کو ڈر ہو کہ ابھی کوئی بجلی ہمارے اوپر گر جائے گی، اس ڈر سے یہ کیا کرتے ہیں، اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں. کیا اس سے بچ جائیں گے، بچ جائیں گے، یہ کانوں میں انگلیاں ٹھونسنے سے کیا یہ بچ جائیں گے؟ یہ تو ایسے ہی ہے کہ بلی کو دیکھ کے کبوتر آنکھیں بند کر لے کہ نہیں ہے ہی نہیں ہے، لیکن وہ تو وہی ہے نا، اس سے خطرہ ٹل تو نہیں جائے گا. यकादुल। अच्छा चलें इतना पहले देख लेते हैं। अब हमने ये एक और मिसाल देखी है मूसलाधार बारिश की। इमेजिन करें थोड़ा, तूफान आया हुआ है, उसके अंदर बिजलियां भी हैं, चमक भी है, कड़क भी है, और कुछ लोग हैं जो अपने कानों में उंगलियां ठूसे हुए हैं कि हमारे ऊपर कोई बिजली ना गिर जाए, हम कहीं इस मुसीबत में ना आ जाएं, हमारे ऊपर कोई मसला ना आ जाए। हाय हमें तो मौत लग रही है कि हमें अभी मौत आ जानी है, ऐसे उनकी हालत हुई भी है। तो यहाँ पे क्या मुराद है बारिश से और इन बाकी चीजों से? बारिश से मुराद है वही की बारिश, वही लगातार आ रही थी, एक के बाद एक सूरत उतर रही है, एक के बाद एक कुरान के अहकामात उतर रहे हैं। जाहिर है इसके बाद तो कुरान तेज तेज उतर रहा था। अब उसमें क्या है, उस कुरान में क्या है? कहीं डरावे हैं, कहीं वार्निंग्स हैं, कहीं सख्त बातें हैं, कहीं जहन्नुम की बातें, कहीं हिसाब किताब की बातें, कहीं कयामत की बातें, कहीं होप है, कहीं खुशखबरियां हैं क्या? तो हर तरह की चीजें थी ना उसके अंदर, वही एक जैसी तो नहीं है। अब क्या है, इनके अंदर तो निफाक है। जब भी कोई ऐसी बात आती थी जो मुनाफिकीन के मुतल्लिक होती, तो इनको लगता था हमारी शामत आ गई है, बस हमारी पकड़ आने लगी। जैसे ना चोर की दाढ़ी में तिनका होता है ना, कि भाई उसको लगता है कि बस मेरे ऊपर ही आ रही है, देखा मुझे ही सुनाया जा रहा है, मेरे मुतल्लिक ही आ गई, अब मुझे कहेंगे ये। अब वो इससे परेशान होते थे, तो वो कानों में उंगलियां ठूंस रहे हैं कि बस आई मौत आई। या दूसरी भी बात है कि जब वही की बारिश हो रही है, इसके अंदर बड़ी सारी बातें हैं। अब उसके अंदर ये भी है कि निकलो अल्लाह के रास्ते में, दो अल्लाह के रास्ते में, जान माल की कुर्बानी करो। तो अब इनको तो मुसीबत पड़ जाती थी, तो इनको तो लगता था हमारे पर मौत ही आने लगी है, हाय अब हम क्या करें, हाय हम तो बड़ी मुसीबत में पड़ गए, क्या हम ये दीन ईमान ले आए, क्या इस्लाम ले आए, हम तो एक जान मुसीबत में पड़ गए। तो उनको तो लगता था बस मौत आ गई हमारे, मौत के डर से कानों में उंगलियां ठूंस रहे, मैंने अभी इधर उधर भागते फिरते हैं कि हम किस तरह से अपनी जान बचाएं, कुछ करें, हमें ना इसमें हिस्सा लेना पड़े। फिर और भी ये बात है कि तारीकी है और कड़क है ना, इससे मुराद है वो मसले, मसाइब, मुश्किलात। देखिए इस्लाम लाना एक बात होती है, और उसके बाद जो चीजें आती हैं वहां पे प्रॉब्लम्स कोई कम तो नहीं थे, मदीना में भी कोई कम तो नहीं थे प्रॉब्लम। आए दिन कोई ना कोई मुश्किल खड़ी रहती थी, आए दिन कोई ना कोई मसाइब आते थे, कभी कोई जंग के लिए आ रहा है, कभी कोई वहां से लश्कर निकल चुका है, कभी कुछ खतरा है, कभी कोई चीज है, कभी कुछ डिमांड किया जा रहा है, कभी कुछ कहा जा रहा है। तो ये तो सारे उनको तो बड़े मुश्किल ये काम लग रहे थे। अब ऐसे में क्या है, उनके लिए तो ये जुल्मत है, राद है, तो उनकी तो जान बड़ी ही मुश्किल में फंस गई थी। और चमक बर्क से मुराद है कामयाबी, कभी कामयाबी भी आ रही थी मुसलमानों को, कोई कामयाबी भी मिलती थी। अब ऐसे में जिस वक्त वो कड़क होती थी, तो तब तो ये मुश्किल में फंस जाते थे कि अब हम क्या करें। कामयाबी के वक्त ठीक है, कामयाबी तो आती है, लेकिन चमक जो होती है, जब बिजली चमकती है, तो वो कोई हमेशा के लिए तो नहीं सब रोशन होता, थोड़ी देर के लिए चमकती फिर नहीं होती, गरज भी आती है, कभी आती है फिर नहीं होती। लेकिन आजमाइशें तो आएंगी अल्लाह की तरफ से, अल्लाह आजमाता है ईमान को भी, झंझोड़ता है ईमान वालों को भी, लेकिन जो पक्के सच्चे होते हैं वो तो खंदा पेशानी से कबूल करते हैं कि ठीक है जो ये आ भी रहा है, अल्लाह मुझे आजमा रहा है और मैंने इस आजमाइश पे पूरा उतरना, और खुशखबरियों के ऊपर खुश भी होता है। और तीसरी भी एक बात है, बिजली और कड़क से मतलब क्या है कि जो नफ्स के ऊपर गरां गुजरती हैं चीजें, जो एहकामात, अब एहकामात उतर रहे हैं, उतर रहे हैं, उतर रहे हैं, उनमें कोई होंगे जो मर्जी के खिलाफ भी हैं, दिल नहीं चाहता करने को, बड़ा नफ्स के ऊपर बड़े भारी हैं वो। अब वो कहते हैं क्या मुसीबत है, हम ये भी करें, अब क्या है, अब ये भी करना पड़ेगा, हाय अब ये भी छोड़ना पड़ेगा। तो इस तरह के अहकामात उतर रहे हैं, अब वो उनको नफ्स के ऊपर, जब जाहिर है जब मर्जी के नहीं है, कन्वीनियंट नहीं है हमारे लिए करने, आसानियां नहीं है इनके अंदर, मुश्किल भी हैं और दिल भी नहीं चाहता करने को, तो फिर क्या होगा? ये तो अच्छे नहीं लगेंगे फिर उनके लिए। वो क्या थे? जैसे कि कड़क है। और वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, अल्लाह तो अहाता किए हुए इन काफरों का, इनको अल्लाह ने ये नहीं कहा इन मुसलमानों का काफिर कहा है, क्योंकि ये अमली तौर पे तो कुफर ही कर रहे हैं ना। जुबान से चाहे ये कह रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन अमल में क्या है? ये कुफर है। उनको ये नहीं पता चल रहा, समझ आ रही कि इस बारिश के फवाइद क्या है? उनका बस ध्यान है कि भाई ये तो कड़क आ गई, हाय हम तो मरने लगे हैं। वाकई देखें आप, कई अहकामात हैं इस्लाम के। मसलन आप, एक छोटी सी मिसाल देती हूँ आपको, हज को ही ले लें। बाज लोगों का हज का नाम सुनते ही उनके दिमाग में क्या आने लगता है? हाय गर्मी, हाय पसीने, हाय धक्के, हाय गंदे बाथरूम, हाय ये वो, हमारा क्या बनेगा, हम तो नहीं इस तरह से रह सकते। वो उसके फवायद को नहीं सोच रहे, उनके दिमाग में बस ये है। उनके लिए बस, उनके लिए क्या है, सिर्फ कड़क ही कड़क उनको सुनती है और कुछ नहीं समझ आता। अच्छा अब क्या होता है इस कड़क में और चमक में, और इसके अंदर इनका रवैया क्या है? अब ये क्या करते क्या है? देखें अब हो तो रही है आसमान से बारिश और साथ ये सब चीजें भी हैं। अब क्या, एक तो उन्होंने कानों में उंगलियां ठूस ली, हमें हम बच जाएं, हम किसी तरह बच जाएं, उल्टे सीधे अपने हीले बहाने कर रहे हैं, खौफ ज्यादा हो जाते हैं। यानी ये जब कानों में उंगलियां ठूसने का मतलब क्या, ये खौफ ज्यादा हो जाते हैं कि हाँ अभी करना पड़ेगा। अब दूसरा इनका क्या रवैया, यकैदुल बर्क यख्तफ अबसारहुम, बिजली करीब है कि बिजली उचक ले इनकी निगाहें, क्योंकि ये इस तरह से कर रहे हैं, ये बचना चाहते हैं ये हक को देखकर, और फिर ये क्या कर रहे हैं, आंखें बंद कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला इनकी चाहे तो बसारत वैसे ही उचक ले। कुल्लमा अदा अलहुम मशौफी, जब भी रोशनी होती है वो चल पड़ते हैं इसमें, वह इजा अजलमा अलैहिम कामू, और जब अंधेरा होता है तो खड़े हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। अब क्या है रोशनी, मैंने आपको क्या बताया रोशनी क्या है? खुशखबरियां आ गई, इजी अहकाम आ गए, वो अहकाम आए जिसमें कोई अपना भी फायदा नजर आ रहा है, तो फिर तो बड़े खुश होकर चल पड़ते हैं, फिर तो हाँ इस्लाम बड़ा अच्छा विज़न। लेकिन जिस वक्त अज़लमा अंधेरा आ जाता है, मैंने क्या बताया अंधेरों की, मैंने आपको तीन इंटरप्रिटेशंस बताई, ठीक है, नफ्स पे गरां चीजें, मसाइब मसाइल परेशानियां ये आ जाती हैं, सख्त अहकाम आ जाते हैं, तो फिर क्या होता है, काम खड़े हो जाते हैं, हाय ये क्या हो गया, आजमाइश आ जाती है खड़े हो जाते हैं, मुश्किल अहकाम आ जाते हैं जो दिल को अच्छे नहीं लग जाते, लग रहे तो खड़े हो जाते हैं, सख्त अहकाम आते हैं तो खड़े हो जाते हैं। और क्या है मतलब अजलम का, यानी जिस वक्त ऐसी चीजें आती हैं जैसे कि जिसमें इनके बोल खोले जा रहे हैं, तब भी खड़े हो जाते हैं जिस, और फिर और अजलम का मतलब क्या है, यानी जो ऐसी चीजें मसलन कयामत के बारे में, हिसाब किताब के बारे में, जहन्नुम की बातें, वहीदें वार्निंग्स दी जा रही हैं और सजाएं बताई जा रही हैं, जो ऐसा करेगा तो उसके लिए ऐसे, तो वो खड़े हो जाते हैं, हाय परेशान हो जाते हैं, हाय हमें ना सुनाओ ये तो डराने वाली बातें, बस करो बस करो, आप तो बहुत डराते हो भाई, ये डराने वाली बातें हमें ना करो, तो खड़े हो जाते हैं, हमसे नहीं चला जाता, हमें ना ये बातें बताओ, है ना। कई लोग ऐसे ही उनके रवैये होते हैं ना, उनको क्या है बस बर्क चाहिए, जब रोशनी होगी तो चल पड़ेंगे, वो तो ये चीजें तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये कैसे लोग हुए, क्या आपको साइकी नजर आई? बताए ना, इसी पीछे साइकोलॉजी समझे ना, मिसाल से फिर आप समझे कि क्या कहने का मकसद क्या है, क्या बताया जा रहा है, किस किस्म के आदमी की पिक्चर है यहाँ पे। हाँ एक तो ऐसा आदमी है जो हर वक्त डरा रहता है, घबराया रहता है, परेशानी में रहता है कि बस अब मेरी शामत आई, अब कोई और हुक्म आ जाएगा, हाय मुसीबत अब ये भी करना पड़ेगा, हाय मुसीबत, अब उसकी जान ही अटकी हुई है, उसको लग रहा है कि मौत ही आ गई मुझे। क्या ये दीन है, इसके अंदर तुम बस कभी कुछ करो कभी कुछ करो। दूसरा क्या पता चलता है, कभी चल रहा है कभी रुक रहा है, कभी चल रहा है कभी रुक रहा है, चल कब रहा है, जब मर्जी के अहकाम आते हैं, ईजी हैं, कन्वीनियंट है। जैसे कि लोग ना जो उनकी मर्जी की चीजें होती हैं ना, मिसाल के तौर पे, यानी आदमियों को बहुत शौक होता है कि ये बताया जाए कि उनके राइट्स क्या हैं और इन बीवियों को क्या करना चाहिए। ये उनका बस इंटरेस्ट का सबसे ज्यादा पॉइंट होता है, जो उनको सुनने का शौक होता है। या हूरों की बातें कर ली जाए तो बस ये उनके इंटरेस्ट है। औरतों को क्या शौक होता है? औरतें जो ही अगर शौहर के हकूक बताए जाए तो औरतें आ जाती हैं, आप हमारे भी तो हकूक बताएं ना, आप उनका भी तो बताएं कि वो क्या करना उनको चाहिए, हमारा ही क्यों कहते हैं कि हमें ये करना चाहिए, उनका बताएं ना। यानी हम क्या चाहते हैं, बस हमारे ऊपर ना कोई, हमें ना कोई हुक्म ले, बस इनका बताएं वो उनको क्या करना चाहिए, वो हमें जानने में ज्यादा इंटरेस्ट है। हमने क्या करना है इसकी हमें नहीं परवाह है, क्योंकि ये तो हमें मुश्किल लगते हैं ना, ये हम नहीं करना चाहते। और जो हमारे लिए कन्वीनियंट है, जो हमें अच्छी लगती है, वो चीजें हमें, हम वो बिल्कुल सर आंखों में। मसलन क्या क्या चीजें अच्छी लगती हैं? औलाद को माँ बाप का बहुत फर्मा बरदार होना चाहिए, ये बस आप ये इसके ऊपर लेक्चर दें, मैं अपने बच्चों को बिठाऊं वो सुने। और जो मुझे क्या कहा जाता है वो मुझे नहीं कोई इंटरेस्ट, मुझे भी कोई अल्लाह की फर्मा बरदारी की जरूरत है कि नहीं, वो नहीं। यानी सेलेक्टिव, अफतुमिनून बिबादिल किताबी व तकफुरून बिबाद, आगे इसी सूरत में आप पढ़ेंगे, किताब के कुछ हिस्से के ऊपर तुम ईमान रखते हो, कुछ हिस्से को छोड़ देते हो, कुफर करते हो उससे, उसका इनकार कर देते हो। तो अगर वालदेन है तो उनको बस ये शौक है कि हम वो सुने जिसमें हमारे हकूक की बात हो। औरत है तो उसको शौक है कि बीवी के हकूक बताए जाए, मर्द है तो उसको शौक है कि हस्बैंड के हकूक बताए जाए। ये चीजें अच्छी लगती हैं। बाकी क्या है, जो हमने करना है वो हमारे लिए राद है, वो हमारे लिए जुल्मतें हैं, वो हमें बड़ा मुश्किल है, वो तो बड़ा ही नहीं। देखो ना, ये आप कैसे करें, इंसान मर्जी नहीं है ना, जी नहीं चाहता करने का, बस करने करते किन चीजों को है जिनमें कोई फायदा नजर आ रहा हो अपना, जिसमें अपनी मर्जी भी हो और जिसमें आसानियां हो, बस कन्वीनियंट हो। और दीन पर अमल करना क्या लगता है ना, क्या लगता है दीन पर अमल करना? मौत, हज़र अल मौत। दीन पर चलना क्या है? मौत है ये तो, हाय हाय निकल जाती है। मगर वही की बारिश में तो सभी चीजें हैं, उसमें तो खुशखबरियां भी हैं, उसमें तो मुश्किल अहकामात भी हैं, उसमें तो सभी चीजें हैं। तो अब क्या करें, क्या कानों में उंगलियां ठूंस रहे, क्या मतलब सुनना ही नहीं चाहते, सुनना ही नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं हमें सुनाओ नहीं, आपने देखा होगा ना कई लोग हैं वो कहते हैं हम आप ना सुनाया करें, बस ये आप लोग तो डराने वाली बातें करते हैं, बस हमें ना सुनाएं। भाई हमसे नहीं ये सुनी जाती जहन्नुम की बातें, तो आप लोग भी सुन लें। इस कुरान में कोई हर वक्त कोई जन्नत की सैरें नहीं कराई जाएंगी, इस कुरान में जहन्नुम की बातें भी आएंगी, इस कुरान में हिसाब किताब का भी बताया जाएगा, इस कुरान में कयामत के भी जिक्र आएंगे, इस कुरान में पूछ गिछ का भी जिक्र आएगा, मुहासबे का भी जिक्र आएगा, हिसाब किताब की भी बातें होंगी। तो उस वक्त ये नहीं डर के कानों में उंगलियां ही आप दे दें और भाग ही जाएं, हाय हाय जैसे कि मौत ही तारी होने लगे, मरने लगे। इस वक्त इंसान कहता है मैं मरने ही लगा हूं, जब कोई बहुत ही मुश्किल चीज होती है। तो ये नहीं करना है, ये रवैये मुनाफिकों के होते हैं, भाग नहीं जाना उस वक्त। अल्लाह ने इंसानों के लिए ये आयतें उतारी हैं कि नहीं? नहीं, मुझे डर बहुत लगता है। ये कौन सी तरीके होते हैं? एक तो यही कभी समझ नहीं आती कि ये कौन सा डर है कि जिसके अंदर इंसान बजाय इसके कि अपने बचाव का सामान करे और तैयारी करे अपनी, कहते हैं सुनाओ ना बस। क्या ना सुनने से, अभी जैसे हमने बात की कि उनके कानों में उंगलियां ठूंसने से क्या वो बच जाएंगे, क्या ना सुनने से ये सारी जुलुमात और रात, ना सुनने से क्या उनका बचाव हो सकता है? वो नहीं सुनना चाहते ना, वो तो सिर्फ रोशनी देखना चाहते हैं, बाकी जो अंधेरा आता है ना, कड़क को नहीं सुनना चाहते, कड़क उनको लगती है हमें ही मारने के लिए आ गई। तो क्या वो नहीं सुनेंगे तो बच जाएंगे? अगर हम ये वईद की और ये जो जितनी भी और ऐसे जिक्र हैं जो हमें नहीं, अस्तग़फिरुल्लाह, नहीं हमें सूट करते, या हमें हमारी मर्जी के नहीं है, हमें पसंद ही नहीं आते, उनका सुनना हमें पसंद नहीं है, क्या ना सुनने से ये खतरे से टल जाएंगे हम, ये बताएं, रिस्क फ्री हो जाएंगे। खतरा तो वही है ना, हमारे आगे क्या है बताएं, क्या चीज है हमारे आगे? एक और दुनिया है जिसमें हमने कदम रखना है, और हम सब ने रखना है। या तो होना कि ना सुनने से आपका बचत हो जाती है, तो ना ही सुनो, जैसे कुछ लोग कहते हैं मौत का जिक्र ना करो, नहुसत की बात होती है। जैसे कि अगर ना जिक्र करेंगे तो आनी ही नहीं है इनके घर, मौत का फरिश्ते ने कहना ये कभी नहीं जिक्र करते थे, वो तो चला जाएगा इनको छोड़ के। कैसी हमाकत की बात है ये भाई, जिक्र करोगे तो उसकी तैयारी करोगे। इसी तरह आज लोग कहते नहीं, हमें ना बताओ, कोई कयामत की बात ना बताओ, ये तो बड़ी डरावनी वाली बात है। तो क्या खतरा टल जाएगा? कयामत ही नहीं आएगी क्योंकि आप डरते हैं। ऐसे नहीं है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं हाँ ये डराते बहुत हैं, डराते बहुत। अगर डराते बहुत हैं के बाद भी नहीं हम डरते, तो फिर अल्लाह माफ करे ना डराया जाए तो फिर हमारे क्या हाल। इसके बावजूद हम ना डर रहे, बेखौफ हैं, जबकि हमें पता है कि हमें भी एक दिन कब्र में जाना है। नहीं, कब्र की कोई बात ना करें, मौत बहुत डर लगता है। किसी ने कहा कि मैंने कब्र एक दफा देख ली थी तो मुझे कितने दिन नींद नहीं आई थी, खुली कब्र देख ली उन्होंने। तो वाकई एक एक खौफनाक मंजर है, लेकिन क्या इसको अवॉइड करने से हम खतरे से बच जाएंगे? हम कभी कब्र में नहीं जाएंगे। क्यों हम ऐसा करते हैं, ये कानों में उंगलियां ठूंस लेते हैं कि हमने सुनना भी नहीं है। तो ये सुनना भी नहीं चाहते थे, और बस इनकी जिंदगी कैसी है, कभी चल पड़े कभी रुक गए, कभी चल पड़े कभी रुक गए। और कयामत के दिन इनके साथ फिर क्या होगा पता है? जब नूर डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, एक तो बिल्कुल पिच डार्कनेस होगी। आप लोगों ने अगर मेरे लेक्चर सीरीज सुनी हो मैदाने माशर में मेरी कहानी, तो उसमें मैं ये बताया है मैंने, तो एक तो पिच डार्कनेस होगी, वहां पे नूर तकसीम किया जाएगा, किसी को कितना नूर मिलेगा उसके ईमान के मुताबिक होगा ना, किसी को पहाड़ों के बराबर, किसी को वहां से वहां तक कितना। लेकिन कुछ लोग होंगे उनको सिर्फ अंगूठे के सामने छोटा सा नूर मिलेगा, वो भी कभी चमकेगा कभी बुझ जाएगा, कभी चमकेगा कभी बुझ जाएगा। एक तो वो है जिनसे बिल्कुल ही नूर ले लिया जाए, खत्म बात, उनका तो नूर बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। उनकी मिसाल वो है जो हमने पिछली आयत में पढ़ी है। लेकिन कुछ वाले ऐसे हैं जिनकी ये मिसाल हम पढ़ रहे हैं, इनका नूर कभी बुझेगा कभी जब, क्योंकि कभी चल पड़ते थे कभी, जहां पे सही लगता था ना कि अच्छा चलो ठीक है चलो ये कर ही लेती हूँ, तो किसी को कोई चीज आसान लगती, किसी को कोई, देखिए ना, अब किसी को नमाज ही सबसे भारी लगती है, रोजा आसान लगता है, किसी को रोजे बहुत भारी मुश्किल लगते हैं, पर्दा आसान लगता है, किसी को फिर पर्दा ऐसी है कि जैसे मौत ही पड़ गई है इनके ऊपर, और कोई और काम करना तस्बीह करना आसान लगता है। तो यानी हर एक की अपनी कन्वीनियंसिस है ना। अल्लाह का दीन कैसा है? उदखुलू फिस्सिल्मी काफा, या ये लदीना आमनू, ए ईमान वालों अल्लाह के दीन में मुकम्मल दाखिल हो जाओ। ये पिक एंड चूज नहीं कर सकते, सेलेक्टिव दीन नहीं हम कर सकते। और अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि लोगों में से कुछ लोग कैसे हैं, व मिनन नासी मैया अब्दुल्लाह आला हरफिन, लोगों में कुछ कुछ ऐसे हैं जो अल्लाह की इबादत कैसे करते हैं, किनारे किनारे पर रह के, एज पे खड़े हैं। यानी क्या मतलब है, ना पूरे अंदर आते हैं ना बाहर है, दरमियान में है, इधर के भी मजे लेने हैं, पता है कि आए हाय अगर कुफर किया तो बिल्कुल जहन्नुम है, आए हाय वो उससे भी डर लगता है, जन्नत भी लेनी है, लेकिन ये हुक्म भी बड़े मुश्किल है यहाँ पे तो करने, ये तो बड़ा मुश्किल है इस्लाम, और कैसे इंसान करे ये सब चीजें, ये भी मुश्किल लगता है। तो कभी एक कदम आगे एक कदम पीछे, एक कदम आगे एक कदम पीछे, मुझे बताएं जो किनारे पे खड़ा हो उसका क्या चांस होता है कि वो लुढ़क जाए, इधर को आ जाएगा या फिर बाहर गिर जाएगा। अगर अंदर ना आया तो क्या उसका चांस है, बाहर गिर जाएगा ना। आप मसलन है कि किसी जगह पे भी किनारे पे खड़े हैं, किसी छत की बाउंड्री वॉल नहीं है, आप उसके किनारे पे खड़े हो जाए अगर जाके, आप क्या सेफ्टी किस में है, अंदर आने में है ना, अंदर आ जाओ। लेकिन इंसान किनारे पे खड़ा रहता है तो किसी वक्त में भी पीछे गिर सकता है अगर उसने आगे कदम ना बढ़ाए, कोई एक हवा का झोंका भी आ सकता है जो उसको गिरा सकता है। लेकिन अक्सर लोग किनारे पे रहना पसंद करते हैं क्योंकि उनको ये मुश्किल लगता है। वो कहते हैं ये तो करना मेरे बस में नहीं है, मैं तो नहीं ये कर सकती। क्योंकि बहुत सारी चीजें जहां जहां पे लोग भी साथ देते हैं, शाबाशें भी मिलती हैं, जमाने का रिवाज भी है, वहां पे तो ठीक है ये काम कर लेते हैं। जहां पे देखें तो सही, जहां पे जमाने का रिवाज एक तरह का हो, लोग किस तरफ चल रहे हैं। इस्लाम आपको कहता नहीं जी आपने तो ये करना, वहां पे देख लो कि फिर हम खड़े रहते हैं कि मैं चलते हैं हम। और मशाऊ मशी होती है वो वाली चाल जो दरमियानी चाल हो, ये भी नहीं कि बड़े दौड़ रहे हैं, ओ अच्छा हमारे कन्वीनियंट तो हम दौड़ना शुरू कर दें। सही होता है दौड़ना, जो मोमिन होता है तो वो तो समय ना हुआ ताना करता है, जूं ही उसके उस कोई हुक्म मिलता है तो कहता है मैंने सुन लिया, मैंने मान लिया, बस अल्लाह का हुक्म है, नो अदर क्वेश्चन, नेक्स्ट कोई बात ही नहीं होगी। मेरी अकल में पड़े ना पड़े, मेरी अकल क्या चीज है, लोग जो मर्जी कहें, लोगों का क्या है, बस मैंने वही करना है जो अल्लाह का हुक्म है। तो वो लोग होते हैं जो बीच में आ गए हैं, पूरे के पूरे दाखिल हुए हैं, और जो किनारे पर होते हैं उनका यही प्रॉब्लम रहता है, करें ना करें, करें ना करें। अब अगर लोगों की सपोर्ट मिल जाएगी, या किसी के लिए लोगों की सपोर्ट होती है, किसी के लिए घर वालों की सपोर्ट होती है, किसी के लिए दुनिया का क्या रिवाज है या क्या फैशन है या हमारे यहाँ रस्में क्या हैं, वो बहुत बड़ी चीज होती है। पहले वो उनको देखते हैं, अगर उनके मुताबिक ये चीज है तो फिर कर लेंगे, अगर उनके मुताबिक नहीं है तो फिर छोड़ दो, फिर खड़े हो गए, फिर ये मुश्किल है, फिर ये अजलम, फिर अंधेरा आई है। हाँ तो कभी कड़क भी आएगी, कभी बर्क भी होगी, ऐसी बात नहीं है, हमेशा कड़क तो नहीं होती, कभी बर्क भी होगी, कभी अंधेरे भी आएंगे, तुम्हें तो सभी लेकर चलना होगा। ये इस्लाम जो है पूरा पैकेज है, पूरा पैकेज लेना पड़ेगा, उसमें पिक एंड चूज नहीं है। जैसे आपको कहते हैं ना, आपको जी अपने ये है तो ये पूरा पैकेज आपको लेना है, आप इसमें से ये ऐसे नहीं कर सकते कि मैंने ये अपनी चॉइस की चीजें, आपको पूरा एक पैकेज हम आपको दे रहे हैं, बस आप पूरे की कीमत दें। लेकिन आज देखें किस तरह से मुसलमान ही पिक एंड चूज करते हैं, और यही प्रॉब्लम है ना। अब देखें यहां पे जो बात कही गई, वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, क्या वो खुद को काफिर समझते हैं? नहीं, वो तो मुसलमानों वाले ही उनके नाम है। मैंने आपको कहा नमाजें भी पढ़ते हैं, कलमा भी इन्होंने पढ़ा हुआ, सबके सामने कलमा पढ़ा, उनकी शक्लो शबाहत भी मुसलमानों वाली उन्होंने बनाई, कोई उनके माथों पे तो नहीं लिखा हुआ ये मुनाफिक है, माथे पे उनके नहीं लिखा हुआ ये काफिर है, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको क्या फरमाया, ये काफिर है। इससे क्या पता चला आपको, क्या समझ आई? इसका मतलब है कि अल्लाह ताला को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहर से कितना भी अपने आप को संवार लो, या अपना नाम मोहम्मद रख लो, या फातिमा रख लो, या आयशा रख लो, या कुछ भी रख लो, अल्लाह ताला को ये है देखना कि तुम्हारे दिलों में क्या है। बाहर की अपीरेंस मैटर करती है, लेकिन वो तब मैटर करती है जब दिल साफ हो, दिल आपके अंदर ईमान हो। अगर दिल में कुफर है, दिल में खोट है, मुनाफकत है, ना इधर के हैं तो ना उधर के हैं, कभी चलते हैं कभी खड़े होते हैं कभी कुछ है, अंदर पूरे दाखिल ही नहीं हुए वे, तो फिर अल्लाह को कोई इससे फर्क नहीं पड़ता कि बाहर कितने बुरके पहने हुए हैं, स्कार्फ लिए हुए हैं, वो नाम क्या रखे हुए हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरह मस्जिदों में हाजिरियां दे रहे हैं, अल्लाह को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने कोर्स इन्होंने किए हुए हैं, अल्लाह ताला देखता है दिल कैसे हैं। और दिलों को अल्लाह ताला सबसे ज्यादा जानता है, उसमें कोई अल्लाह को धोखा नहीं दे सकता। और हमने पहले पढ़ा पिछली दफा भी कि अल्लाह ताला को अपनी जुबान की बातों से आप राजी नहीं कर सकते कि हम बोलते जाए नहीं, नहीं हम तो मुसलमान, ये कोई इंसानों के साथ मामला थोड़ी हो रहा है, अल्लाह से मामला हो रहा है। तो मुनाफ़क़त में सबसे ज्यादा डेंजरस चीज ये है कि इंसान को पता ही नहीं चलता कि उसके अंदर मुनाफ़क़त है। हमने पढ़ा है ना ला यशऊरून, वो उनको शऊर ही नहीं है, ये असल डरने की बात है कि पता ही नहीं है उसको, और वो अपने आप को और लोग जो उसके इर्द गिर्द के लोग हैं वो उसको मुसलमान का ही टाइटल देते हैं, मुसलमान ही समझते हैं, और वो भी अपने आप को मुसलमान ही कहलाता है, لیکن دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مسلمان نہیں گنا جاتا. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اگر چاہتا اللہ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ تو لے جاتا ان کی سماعت بھی اور بصارت بھی. یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ پیچھے دیکھیں, پیچھے دیکھیں سم بکم عمیون, وہ اندھے بہرے گونگے ہو گئے, وہ قرآن کو نہ سننا چاہتے ہیں نہ قرآن کو بولنا. قرآن کی کوئی بات ان کی کانوں میں پڑ بھی گئی, روشنی میں تو آئے تھے لیکن کوئی بات کو آگے بیان ہی نہیں کرنا چاہتے. تو وہ ایسے نہیں تھا کہ ان کی زبانیں کٹ گئی تھی, مطلب ہے بولتے ہی نہیں. آپ دیکھ لیں آج بھی کئی لوگ ہیں قرآن کی کتنی باتیں سنتے ہیں مگر کسی مجلس میں بیٹھیں گے دنیا جہان کی گپے مار لیں گے, قرآن کی کوئی بات نہیں آگے پہنچانے, قرآن کی کوئی بات نہیں آگے کرتے. ایسے لوگوں کے لیے دیکھیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ منافقت کی نشانیاں. سم من بک من امیون, دین کے معاملے میں گونگے بہرے اندھے ہیں, باقی معاملات میں بہت تیز ہیں, پر اس معاملے میں کیا ہے, نہ ان کو کچھ سنتا ہے نہ وہ کچھ بولتے ہیں نہ وہ کچھ یعنی کوئی بات کا بات کو آگے بیان کرتے ہیں. وہ کیسے ہیں؟ اللہ کے نزدیک وہ اندھے بہرے گونگے. استغفر اللہ. ان کو بھی اللہ اندھا بہرا گونگا کر سکتا تھا, لو شاء اللہ, اگر اللہ چاہتا تو ان کو کر دیتا, لیکن کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے, نہیں کیا ان کو. اگر اللہ چاہتا تو ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پہ کرنے پہ قادر ہے. جب ان کو ایسا چھوڑ دیا تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ ان کی سماعت اور بصارت ہی لے لیتا, یہ نہ دیکھ سکتے اور نہ ہی ان کو کچھ سنتا. لیکن کیوں نہیں اللہ نے کیا؟ اس لیے کہ کبھی کبھی یہ چلتے, میں نے آپ کو بتایا نا کنارے پہ ہیں, دیر از اے چانس, اور اللہ ان کو یہ چانس دینا چاہتا ہے, دیر از اے چانس کہ یہ اندر داخل ہو جائیں پورے کے پورے, دیر از اے چانس کہ یہ آ جائیں اسلام میں پورے کے پورے, بچ جائیں یہ. لیکن اس وقت کیا ہے, یہ کنارے پہ کھڑے ہوئے ہیں, اس وقت ان کی پوزیشن ڈینجر میں ہے, یہ ابھی ڈینجر زون میں ہے, یہ ان کا فرسٹ سیکنڈ سٹیج ہے, یہ اندر آنے کا چانس ہے, یہ بھی ان کا علاج ہو سکتا ہے, ابھی ان کے لیے بہتری آ سکتی ہے, بشرطے کہ یہ چل پڑے, چل پڑیں اور داخل ہو جائیں پورے کے پورے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ چانس دیا ہے. تو تب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو جس طرح یہ حرکتیں کر رہے ہیں کہ کبھی رکتے ہیں کبھی چلتے ہیں کبھی کچھ ہے, اس دین کے اوپر چلنا ان کے لیے ایسے ہے جیسے ان کے اوپر موت آ گئی ہو, یہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتی ہیں, یہ سننا ہی نہیں چاہتے, تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو نہ ہی سنواتا, ان کو بہرا ہی کر دیتا, لے جاتا ان کی سماعت. جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں سب چیزیں سنتے ہیں, ہر میوزک ہے ہر بات چیت ہے ہر ڈرامہ فلمیں ان کو سب یاد ہیں کہ کون سی لیٹسٹ آئی ہے کون سی آنے والی ہے, گھنٹوں ٹی ویوں کے آگے بیٹھے رہتے ہیں, لیپ ٹاپ پہ بیٹھے رہتے ہیں, اپنے آئی پیڈز کھولے رکھتے ہیں, فونوں پہ چیزیں دیکھتے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں. لیکن اگر توفیق نہیں ہے تو اللہ کی بات سننے کی توفیق نہیں, اس میں کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں. بارش تو برس رہی ہے, احکامات آ رہے ہیں, انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھوسی ہوئی, وہ نہیں سننا چاہتے ہیں. کیا یہ کان اور آنکھیں, اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ فیکلٹیز اللہ تعالیٰ نے, یہ قوتیں اللہ تعالیٰ نے کس لیے دی ہیں؟ کہ اللہ کو پہچانو, اس کو جانو کہ اس کی مرضی کیا ہے, اس کی خوشی کس میں ہے, وہ کس سے راضی ہوتا ہے, میں وہ کام کروں. اور اگر اللہ کو ہی نہ پہچانا تو ان قوتوں سے کیا فائدہ اٹھایا؟ یہی قوتیں جن سے ہدایت کے یہ ذرائع ہیں, یہ سورسز ہیں, ان کے ذریعے ہدایت آتی ہے. پچھلے والوں کی تو یہ سلب ہو چکی, وہ تو ڈپرائیو ہو چکے اس سے, یہ ابھی چانس رکھتے ہیں اور اللہ نے ان کو چانس دے دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اپرچونیٹی دے دی ہے, ان سے ابھی چھینا نہیں ہے, چاہتا تو اللہ چھین سکتا تھا اور اللہ اس پر قادر ہے, یہ بات کہی جا رہی ہے. لیکن اللہ نے نہیں چھینی, اور کیوں چھینتا اللہ, یہ ایک طرح سے وارننگ ان کو دی جا رہی ہے کہ اگر اللہ چاہے نا تو لے جائے, کہ جو تم حرکتیں کر رہے ان کی حرکتوں کی وجہ سے دیکھیں ان کی چھن گئی ہیں سماعت بصارت, وہ دودھ گونگے بہرے اندھے ہو گئے, ان کو تو نہ نظر آتا ہے نہ وہ کچھ بولتے ہیں حق بات, نہ تو وہ کوئی سنتے ہیں حق بات, نہ کوئی دیکھتے ہیں حق کو, وہ تو بالکل بلائنڈ ہو چکے. اگر انہوں نے بھی یہی طریقہ کیا تو میں نے آپ کو بتایا نا ابھی فرسٹ سیکنڈ سٹیج ہے, تو وہ تھرڈ فورتھ سٹیج تک پہنچ جائیں گے اگر اسی پہ چلتے رہے, یعنی پھر بھی نہیں سنا. ابھی اللہ نے چانس دیا, وہ کھولے ہوئے ان کی آنکھیں اور کان, लेकिन इन्होंने फिर भी नहीं सुना और यही रवैया इख्तियार किए रखा, तो इनके कानों आंखों के ऊपर भी मोहर लग जाएगी, पर्दे पड़ जाएंगे, फिर तो सुनाई देगा ही नहीं। तो किस लिए ये आंखें कान है, किस लिए ये जुबान है? अरे इनको ये अल्लाह के लिए इस्तेमाल नहीं करोगे तो किन चीजों में पड़े हो? क्या इन्हीं कानों को बंद कर दोगे अल्लाह के जिक्र से? ये सुनना ही नहीं चाहते हो, कोई बात जानना ही नहीं चाहते हो? नहीं, फिर सुनेंगे तो अमल करना पड़ेगा। तो भाई, तो यानी वो रुक जाना चाहते हैं, वो नहीं आगे चलना चाहते, क्योंकि उनको ये सारे अहकाम बड़े मुश्किल लगते हैं, तो इसलिए मुंह से ही कह देते हैं फिर अमल करना पड़ेगा ना। तो कानों में उंगलियां ठूंस ली हैं, क्योंकि ये बड़े मुश्किल अहकाम हैं, ये तो हमें मौत लगते हैं, हमने जब इस रास्ते पे चलना ही नहीं तो सुने क्यों हम? तो उन्होंने कानों में उंगलियां ठूंस ली हैं, अब वो आते ही नहीं इस मजलिस में, अब अभी बैठते ही नहीं सुनने के लिए। ऐसे लोगों को अगर अल्लाह चाहे तो सल्ब भी कर ले हमेशा के लिए, उनको फिर ना सुने, यानी क्या मतलब होगा? वैसे नहीं कि बहरे हो जाएंगे, यानी फिर कभी आ ही नहीं सकेंगे इस तरह, लायर जो फिर कभी भी नहीं लौटेंगे हिदायत की तरह। तो जो ऐसा करते हैं फिर वो इस नौबत तक पहुंच जाते हैं, फिर एहसास भी खत्म हो जाता है। तो उससे पहले ही इंसान को पलटना चाहिए, आंखें कान खोलने चाहिए, अल्लाह ताला के अहकामात पे लब्बाई कहनी चाहिए। कभी भी आगे जाके आपको कुरान करीम में कोई ऐसे हुक्म नजर आए जो कि आपको लगे कि ये मुश्किल है, तो अल्लाह से तौफीक मांगिए कि अल्लाह ताला मुझसे अमल तूने कराना है, मुझसे करा लेना ये। और कभी ये ना करें कि उनसे भागें, उसको छोड़ दें कुरान को, नहीं हमसे तो होता ही नहीं है तो छोड़ो हम करते ही नहीं, ये ना कभी करें। कभी इससे दूर ना हो, कभी कानों को बंद ना कर लें कि डरें इस बात से कि कहीं अल्लाह ताला वाकई कानों को हमेशा के लिए ना बंद कर दे। तो ये था सबक, और बहुत ही जगा देने वाला सबक है। इसके बाद बहुत ज़रूरत है अमल की बातों में लिखें कि इन आयात की रोशनी में हम अपना मुहासबा करें और देखें कि हम कहीं इन्हीं रवैयों का शिकार तो नहीं है, हम भी कहीं ऐसा ही तो नहीं करते। जब अल्लाह के हुक्म आते हैं या कोई डरावे आते हैं या कोई ऐसी ऐसी बातें आती हैं जो हमारे नफ्स पे मुश्किल हैं, तो हम कैसे सुनते हैं उनको और क्या कहते हैं उसके बाद, हमारा रवैया क्या होता है? अव्वल तो अल्लाह के किसी हुक्म को हम नापसंद कर ही नहीं सकते, लेकिन अगर नफ्स पे मुश्किल भी है तब भी क्या रवैया होता है? अल्लाह ताला हम सबको माफ़ फरमाए, और अल्लाह ताला जो हम पढ़ रहे हैं उसके ऊपर अमल करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुनिए।
وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير